ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायासु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तेर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवतम स्कंदाठ अध्याय 18 श्लोक संख्या 1। इस अध्याय में भगवान वामन देव के अवतार के विषय में बताए गए हैं।
श्री शुक उवाच इत्थम् विरंचि अस्तुते कर्म वीर्य प्रादुर्बभूव अमृतभू आदित्याम् चतुर्भुज शंख गदा अब्ज चक्र पिशंगवासा नलिनयायति क्षण। श्री शुक उवाच इत्थम् विरंचि अस्तुति कर्म वीर्य प्रादुर्बभू अमृत भोरदित्याम चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र पिशंगवासा नलिनायते क्षण। श्री शुक उवाच इत्थम् विरंचि अस्तुत कर्म वीर्य प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्याम् चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र पिशंगवासा नलिनायते क्षण। श्री शुक उवाच इत्थम् विरंचि अस्तुति कर्म वीर्य प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्याम् चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र पिशंगवासा नलिनायते क्षण।
आज बामन देव का है ना, इसलिए कल से रेगुलर होगा।
इत्थं विरन्त्यस्तत्कर्म वीर्य प्रादुर्बभुवामृतभोरदित्याम् चतुर्भुजः शङ्खगदाव्यचक्रः त्रिशङ्गवासानलिनायतेक्षण
माता जी शब्दार्थ श्री शुकवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इत्थम इस तरह से विरंचि अस्तुत कर्म वीर्य भगवान जिनके कार्यों एवं पराक्रम की प्रशंसा ब्रह्मा जी भी करते हैं भगवान जिनके कार्यों एवं पराक्रम की प्रशंसा ब्रह्मा जी भी करते हैं प्रादुर्बभूव प्रकट हुए अमृतभो जिनका प्राकट्य सदैव मृत्यु रहित होता है अदित्याम अदिति के गर्भ से चतुर्भुज चार भुजाओं वाले गदा शंख गदा अब्ज चक्र शंख गदा कमल तथा चक्र से सुशोभित पिशंगवासा पीताम्बर धारण किए नलिन आयत एक क्षण कमल की पखुड़ियों के समान खिली हुई आंखों वाले अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशोगान कर चुके तो भगवान जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती अदिति के गर्भ से प्रकट हुए उनके चार हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे वे पीताम्बर धारण किए हुए और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी तात्पर्य इस श्लोक में अमृत भू शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ है कभी कभी भगवान सामान्य बालक की भांति जन्म लेते हैं किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वे जन्म मृत्यु या बुढ़ापे से प्रभावित होते हैं भगवान के अवतारों के प्राकट्य तथा उनके कार्यकलापों के विषय में समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी चाहिए इसकी पुष्टि भगवद गीता के चार अध्याय के 9 श्लोक में हुई है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोभाव या उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं भगवान को भौतिक कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं होता जो कोई भगवान के प्राकट्य तिरोधान तथा कार्यकलापों को समझता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है इस शरीर को छोड़ने पर उसे फिर से भौतिक शरीर कभी नहीं धारण करना होता अपितु वह सीधे स्वर्ग को चला जाता है त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुनम स्वर्ग मतलब वैकुंठ को भी स्वर्ग कहा जाता है बहुत जगह वैकुंठ को स्वर्ग भी कहा गया है, कि यहां स्वर्ग लिखा गया है। तो आज वामन द्वादशी है, भगवान वामन देव अपने भाई इंद्र के कार्य को, देवताओं को कार्य को साधने के लिए माता अदिति के प्रार्थना से उपेंद्र के रूप में अथवा वामन देव के रूप में प्रकट हुए। इसके पूर्व कथा है कि मां अदिति बहुत दुखी थी जब उसके पुत्र स्वर्ग से हटा दिए गए थे और स्वर्ग पर असुरों के राजा बलि महाराज का आधिपत्य हो गया था। बलि महाराज के समय में असुरों का बल बहुत बढ़ गया था, क्योंकि भक्त थे बलि महाराज, और बलि महाराज के भक्ति के प्रभाव से देवता उनके सामने जुगनू की तरह लग रहे थे। जैसे दिन में जुगनू का कोई महत्व नहीं होता है, सूर्य के सामने दीपक दिखाना जैसे सूर्य है वृथा दीपो दिवा पिच, दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है और समुद्र में वर्षा करना व्यर्थ है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानम समर्थस्य, वृथा दीपो दिवा पिच। तो बलि महाराज का इतना पराक्रम स्वर्ग बढ़ गया था भगवान के भक्ति से कि देवता लोग उनके सामने युद्ध में टिक नहीं पाए, सब पराजित हो गए, इधर उधर भाग गए, छुप गए। यह दुर्दशा अपने पुत्रों को देख करके मां अदिति को बहुत शोक हुआ और उस समय कश्यप मुनि भी तपस्या पर चले गए थे। कभी कभी ऋषि मुनि लोग हिमालय में या एकांत में जाकर भजन करते थे, हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे। तो सतयुग में लोगों की आयु एक लाख वर्ष होती थी, कई हजार वर्ष तपस्या करते थे। जैसे विश्वामित्र मुनि 60,000 वर्ष तपस्या किए, हिरण्यकश्यपु जो है देवताओं के दिव्य वर्ष के अनुसार 100 वर्ष तपस्या, मतलब बहुत बड़ा तपस्या। जैसे आजकल भक्त लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं तपस्या करने के लिए, कोई वृंदावन जाता है तो उधर भी खाना आराम से सोना, अभी मंगल आरती नहीं करना है। जैसे मंदिर से बाहर गए तो मतलब फ्री हो गए, कोई प्रोग्राम नहीं आना है। लेकिन पहले के महात्मा लोग जाते थे तो कुछ सेवा से विराम लेकर तो ज्यादा तपस्या करते थे, ज्यादा भजन करते थे। थोड़ा मंदिर से बाहर हुआ तो बस सब प्रोग्राम बन। तो कश्यप मुनि घर से कुछ अवकाश लेकर के घर गृहस्थी से अखंड तपस्या में नियुक्त थे, तो बहुत लंबा तपस्या में थे, समाधि में। जब समाधि छूटी तो घर में वापस आए। गृहस्थ का धर्म है कि घर को भी देखना चाहिए, और घर क्या है, पत्नी ही घर है। शास्त्र में कहा गया कि घर को घर नहीं कहा गया है, नम गृहम गृहमुच्यते, गृहिणी गृहमुच्यते, जो घर में गृहिणी है, जो घर को सजाती है, तो वही घर है वास्तव में। स्त्री न हो तो घर का कौन साफ सफाई करेगा, कौन उसको सजाएगा। वास्तव में जो स्त्री है, गृह लक्ष्मी उसको कहा जाता है, वास्तविकता भी है। घर के कार्यों में जितनी स्त्रियां दक्ष हैं, पुरुष नहीं कर पाएंगे। पुरुष बाहर का काम करते हैं, स्त्री घर को सजाती है। इसलिए एक कहावत है कि बिन घरनी घर भूत के डेरा, भोजपुरी में कहावत है कि बिन घरनी घर भूत के डेरा। अगर घर में घरनी नहीं है तो भूत का डेरा है। लेकिन गृहस्थ के लिए महाभारत में कहा गया कि 6 गृहस्थ का सुख है, या भौतिक संसार में 6 सुख के साधन है। तो प्रथम है अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्सश्च पुत्र अर्थ करी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस संसार में, जीव लोक में, मर्त लोक में 6 सुख के साधन हैं। अर्थागमो, नित्य अर्थ का आगमन हो, ऐसा व्यवसाय हो, ऐसा नौकरी हो कि रोज पैसा का आगमन होता हो। जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, व्यवसायी हैं, उनको रोज पैसे का आगमन होता है। अर्थागमो नित्यम, नित्यम रोगिता च, और नित्य निरोग रहे, कोई बीमारी न हो। न शारीरिक कोई बीमारी हो, न मानसिक क्लेश हो, नित निरोग रहे। और प्रिया च भार्या, और पत्नी प्रिय हो और प्रिय करने वाली हो, प्रियवादिनी च, प्रिय बोलने वाली, कोकिल बहनी, जैसे कोयल बोलती है तो लोग कितने आनंदित हो जाते हैं। कोयल जब बोलती है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कोयल का बोलना और कौवे का बोलना, कौवा बोलता है तो उतना हर्ष नहीं होता है, लेकिन कोयल जब बोलती है तो पत्नी हो जो घर में वो सुभाषिणी सुंदर बोलने वाली हो और उस सेवा भाव भी हो, सेवा करने वाली भी हो। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्सश्च पुत्र, पुत्र उसके वशीभूत हो, आज्ञाकारी हो। पुत्र आज्ञाकारी हो, पिता के अनुकूल चलता है तो बड़ा सरल होता है, घर गृहस्थी बहुत आसान हो जाता है। अगर पुत्र बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बाप कहता है पूरब जाओ तो बोले नहीं पश्चिम जाऊंगा, बाप कहता है कि ये काम करो तो बोले नहीं मैं वो काम करूंगा, ऐसा होता है बहुत। पिताजी कहेंगे कि जाओ आज खेती में काम करना, तो बोले नहीं मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा, तो विसंगति हो जाती है। जब जब अनुकूल होता है तो वो गृहस्थ जो है, जहां पति पत्नी और परिवार संतुष्ट रहते हैं और मेल होता है सबका, तो घर जो है स्वर्ग होता है। जिस घर में सब सुखी से रहते हैं, चाणक्य पंडित तो कहते हैं जिस घर में माता जस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी, आए अप्रियवादिनी, अरण्यम तेन गंतव्यम जथा अरण्यम तथा गृहम। अरण्यम तेन गंतव्यम, जिस घर में प्रिय करने वाली मां न हो, मां अपने लड़के का हमेशा प्रिय करती है, मां हमेशा सोचती है कि हमारे लड़के का प्रगति हो, वो तपस्या करती है, व्रत करती है। गांव में हम लोग देखे हैं स्त्रियां जब द्वितीया भुगती हैं तो बहुत तपस्या करती हैं माताएं, क्योंकि हमारा पुत्र जो है प्रगति करे। और अपने बल्कि कुछ माताएं 7 दिन व्रत करती हैं, मंगलवार भी भुकना है, सोमवार भी, गुरुवार भी, क्योंकि अपने लड़के के लिए। हम लोग भी देखे हैं कि माँ जो है व्रत करती है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमारे पुत्र जो है प्रगति करें। तो माता अस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी, अप्रियवादिनी विच्छेद करेंगे तो अरण्यम तेन गंतव्यम। तो एक बार राधारमण महाराज बता रहे थे कि जब घर और वन समान ही है तो वन में जाने की क्या जरूरत है, जब घर भी वन जैसा ही है तो इसी वन में रहना चाहिए। अरण्यम तेन गंतव्यम, वन में क्यों जाना चाहिए। माता अस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतम, जथारण्यम तथा गृहम, जथारण्यम तथा गृहम, दोनों वन ही है तो इसी वन में रहना चाहिए। नहीं, ये वन में ज्यादा ये होता है, लेकिन जंगल में शेर हैं, भालू हैं, कभी कभी सामने आते हैं, या कभी कभी देखकर आदमी को भाग जाते हैं लेकिन इस घर में जो है हमेशा आमना सामना होता है, तो इसलिए इस वन से वो वन श्रेष्ठ है। तो जब कश्यप मुनि बहुत काल तपस्या करने के बाद जब घर आए तो देखे घर उनका बिल्कुल उजड़ गया था, जो घर सुहावना था। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं उनका घर जो बहुत सुहावना था, बहुत सुंदर था, बिल्कुल उजड़ जैसा गया था। और घर में जो उनकी पत्नी थी बहुत खिन्न थी और बहुत दुर्बल हो गई थी और बहुत चिंतित थी, तो अपने पत्नी को देखकर, उनकी पत्नी उनको अपने घर में आए देखकर बहुत स्वागत करती है, पानी देती, आसन देती। कोई घर में आता है तो प्रथम उसका स्वागत पानी से लोग करते हैं और आसन देते हैं, फिर खाने को देते हैं। तो अपने पति का स्वागत की, इसके बाद कश्यप मुनि पूछते हैं कि क्या समस्या है, क्यों खिन्न हो, क्यों उदास हो। तो अनुमान करते हैं क्या तुम कोई अतिथि का सेवा नहीं की हो, गृहस्थ के घर में अगर कोई अतिथि आए और बिना स्वागत चले जाए, उसका कोई स्वागत न हो, या घर में कोई आहुति न हो। पहले हर गृहस्थ अपने घर में अग्नि में आहुति देते थे, भगवान के 2 मुख हैं, अग्नि और ब्राह्मण, तो 2 मुख से भगवान खाते हैं। आज भी गांव में कहीं कहीं लोग प्रतिदिन घर में आहुति देते हैं भगवान को, भगवान अग्नि के माध्यम से खाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो कहे कि क्या तुमने अग्नि में आहुति नहीं प्रज्वलित की या ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराई या धर्म जो घर गृहस्थी का जो कर्तव्य हो तुम निर्वाह नहीं की, क्यों उदास हो? एक श्लोक में कश्यप जी कहते हैं गृह मेधिनी, गृह मेधिनी मतलब जो गृह कार्यों में दक्ष है, जो धर्म अर्थ काम को हमेशा सजाती है वो गृह मेधिनी है, जो घर के कार्यों को निपुणता से करती है। तो क्या कमी हो गई, क्यों उदास हो? तो अंत में ये बहुत लंबा कन्वर्सेशन है अदिति और कश्यप का, तो अंत में यह निष्कर्ष पर आते हैं और अदिति कहती है कि हमारे पुत्र इस समय स्वर्ग से निर्वासित हो गए हैं, जैसे कोई कहते ना कि फुटपाथ पर आ गए हैं कोई मान लीजिए महल में रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल रोड पर आ गया, रोड छाप हो गया। बोलिए हमारे पुत्र सभी स्वर्ग से भगा दिए गए हैं, आप बहुत काल तक नहीं थे और हमारे सौतेली के जो पुत्र हैं दिति के वो स्वर्ग पर राज्य कर रहे हैं। कश्यप की कई पत्नियां हैं, से कश्यप हैं, अदिति हैं, कद्रु हैं, विनीता हैं, कश्यप से ये सृष्टि जो है भरा है। तो कश्यप मुनि से वो कहती है कि हमारे पुत्र बहुत दुखी हैं और सब इधर उधर पलायन कर गए हैं, आप कुछ करिए। एक बार राधाकुंद महाराज बता रहे थे लेक्चर में कि माँ जो है हमेशा अपने पुत्रों को देखती है कि वो कैसा है। तो भोजपुरी का एक कहावत कोट रहे थे, मैं मॉरिशस में भोजपुरी का बहुत कोट किया था और भोजपुरी का बहुत सारा दृष्टांत जो है। तो महाराज बता रहे थे कि माँ हमेशा कोई पुत्र उसका आता है तो माँ देखे, माई देखे पेट और मेहर देखे टेट। माँ जो है हमेशा अपने पुत्र का स्वास्थ्य देखती है कि स्वस्थ है कि नहीं, प्रसन्न है कि नहीं, और मेहर देखे टेट, माँ जो है टेट देखती है कि पैसा लाया है कि नहीं माँ देखे, माई देखे पेट और मेहर देखे टेट। बड़ा अच्छा सारगर्भित चीज है कि पत्नी धन की आकांक्षा करती है या कुछ मांग करती है, लेकिन माँ जो है निष्काम भाव से सेवा करती है। माँ कभी अपेक्षा नहीं रखती है पुत्र से, माँ हमेशा देखती है कि हाँ ये ठीक रहे। माँ बच्चे के लिए कितना परिश्रम करती है, 9 महीने तक उसको उदर में अपना खून पिलाती है, फिर जब जन्म लेता है तो उसका मल मूत्र साफ करती है, कभी कभी सर्दी गर्मी सर्दी में भी 2 बजे बच्चे रोने लगते हैं तो जग जाती है, उसका साफ सफाई करती है। तो माँ का जो सेवा है पुत्र के प्रति ये बहुत शुद्ध सेवा है, और इस पृथ्वी पर माँ का जो प्रेम है पुत्र के प्रति वो अद्भुत है। भगवान के बाद जो है दूसरा स्थान आता है माँ का। जैसे माँ अपने पुत्र से स्नेह करती है, वैसे जैसे भगवान अपने भक्तों के प्रति भक्त वत्सल होते हैं। तो ये होने के बाद कश्यप मुनि कहे कि ठीक है, अगर तुम्हें अपने पुत्रों को पुनः साम्राज्य प्राप्त करना है तपस्या करो, पयोव्रत करो। पयोव्रत करने से तुम्हें जो है सिद्धि प्राप्त होगी। तो उनके मार्ग उनके कहने के मार्गानुसार अदिति ने पयोव्रत किया, बहुत बड़ा तपस्या है पयोव्रत। ऐसे 12 दिन का होता है लेकिन उसमें बहुत कुछ नियम होता है, पयोव्रत का बहुत विस्तार से इसके पीछे दिया है कि अदिति ने पयोव्रत किया और पयोव्रत करके उसने भगवान को प्राप्त किया उपेंद्र के रूप में, वामन देव के रूप में। ऐसे अदिति पूर्व जन्म में पिशवी थी और कश्यप जो है सुतपा थे, सुतपा और पिशवी। सुतपा और पिशवी के रूप में लोग 12 वर्ष तपस्या किए थे, 12,000 वर्ष। सुतपा का अर्थ जिसका बहुत सुंदर तप होता है उसको सुतपा कहते हैं। तो सुतपा और पिशी ये दंपति जो है बहुत तपस्या के 12 वर्ष तपस्या किए थे कि भगवान जैसे हमें पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान प्रसन्न होकर कहे कि मेरे जैसा तो कोई नहीं हो सकता, नभ्यधिक कुतन्य, मेरे समान तो होना ही मुश्किल, मुझसे अधिक भी कोई नहीं हो सकता है, भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो भगवान कहे कि मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तो पिशी गर्भ के रूप में भगवान सुतपा और पिशी के पुत्र बन करके आए। वही फिर उपेंद्र के रूप में आए कश्यप पतिति के द्वारा, फिर देवकी और वसुदेव के रूप में, कृष्ण के रूप में आए षडेश्वर परिपूर्ण। तो इस तरह से उपेंद्र को प्राप्त करके अदिति धन्य हो गई, जो भगवान ही उसके पुत्र रूप में आए हैं, तो कितना बड़ा सौभाग्य है अदिति का। तो क्यों आए, अपने भक्तों को का कार्य बनाने के लिए। और जब भगवान प्रकट हुए तो यहां दिया चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म, चार भुजा में प्रकट हुए अदिति के सामने, और चारों भुजा में चार आयु धारण किए थे, शंख चक्र गदा पद्म, और पीताम्बर धारण किए थे। तो आप कह सकते हैं कि फिर वामन रूप में क्यों हो गए, दुभुज रूप में क्यों हो गए, क्योंकि कि अपने भाई का काम करना था इंद्र का, और छोटा भाई हमेशा बड़े भाई का अनुगामी होता है। और अदिति के प्रार्थना से भगवान वामन रूप धारण करके बलि महाराज के यज्ञशाला में भृगु कच्छ, जो नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ है, वहां भृगु वंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, वहीं पर वामन रूप धारण करके गए। भगवान अपने भक्त से कभी युद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए भिक्षुक बनकर गए, बटू का रूप धारण करके गए, बटू बामनो ब्यात। क्यों बटू का रूप धारण कर गए, क्योंकि मांगने जाना था। अगर चतुर्भुज रूप में जाते, अगर मांगना हो तो मांगने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। मांगने वाले का हाथ नीचे होता है और जो देता है उसका हाथ ऊपर होता है। तो नारायण, एक कवि ने लिखा कि नारायण हूं को भयो बावन आंगुर गात, नारायण को भी मांगने के लिए जाना हुआ तो बौना बनकर जाना पड़ा, इसलिए मांगना अच्छा नहीं होता है। इसलिए बहुत महात्मा लोग मांगते हैं, जैसे छह गोस्वामी आयाचक वृत्ति, कुछ नहीं मांगते थे, जो आकाश वृत्ति से जो अपने आप मिल जाता है, स्वतः जो मिल जाता है वो वही अच्छा है। एक बार महाविष्णु महाराज बरझरी प्रभु से बात कर रहे थे, तो कुछ द्वारका के लिए यहां से कुछ उनको पैसा मिला था 10 लाख द्वारका मंदिर को डेवलप करने के लिए, तो वो एक पद कोट किए, मुझे याद है कि सहज मिले वो दूध बराबर, मांग दिया तो पानी, आ वह है रक्त बराबर जब होए खींचा तानी। स्वाभाविक जो मिल जाता है बिना मांगे सहज, वो दूध के बराबर है, सहज मिले वो दूध बराबर, अब मांग दिया तो पानी, अगर मांगने से मिला तो पानी के बराबर है, और वह है रक्त बराबर जब होए खींचा तानी। जब लेने के लिए, जैसे दक्षिणा लेने के लिए कभी कभी जजमान में और पुरोहित में होता है कि नहीं इतना दे दीजिए, मैं इतना नहीं लूंगा, खूब बांस होता है। जैसे श्राद्ध में हम लोग देखे गांव में जब श्राद्ध होता है, सिंह माता पिता का या श्राद्ध में जो महापात्र होते हैं वो बोलते नहीं गोदान कीजिए, ये तो आपकी मां नरक में चली जाएगी, बैतरणी पार करने के लिए गाय दीजिए गोदान, बिना गाय के कैसे पार होगी। हाउस प्रोग्राम भक्त लोग कहते हैं इतना देंगे तब हम जाएंगे, नहीं देंगे तो हम नहीं प्रोग्राम में जाएंगे। तो जहां लेने के लिए ये हो, बांसबाजी हो या रगड़ा रगड़ी हो, खींचा तानी हो, तो रक्त के बराबर है, स्वाभाविक जो मिल गया तो वो अमृत है, बिना ऐसे मिल जाता है, बिना मांगे मोती मिले, बिना मांगे भी मिल जाता है, कभी कभी मांगने से नहीं मिलता है। एक बार विष्णु मूर्ति प्रभु थे सूरदास प्रभु के ससुर, तो वो कहे कि जो हमसे अगर कोई मांगता है तो मैं नहीं देता हूं। बोले अगर एक बार कोई प्रभुपाद डिसाइपल थे तो उनसे कुछ मांगे, वो पैसा मांगे तो बोले मांगने वाले को मैं नहीं देता हूं, जो नहीं मांगता है उसको देता हूं, बताने थे। तो वामन अवतार में भगवान को दान लेना था अपने भक्त से, तो अपने भक्त के यहां भगवान हमेशा छोटा ही बनकर जाते हैं, कभी भगवान अपना बड़प्पन नहीं दिखाते हैं। या मांगना है तो अब मर्सिडीज कार में जाएंगे भीख मांगने के लिए तो नहीं मिलेगा, बोलेंगे इतना पैसा है आपके पास, इतना बड़ा कार है, भीख मांग रहे हो सिग्नल में। जो भिखारी का रूप बनाएगा तब न मिलेगा, भेख से भीख मिलता है, लोग बोलते हैं भेख बनाएगा तब न भीख मिलेगा। जैसे एक बार हम लोग मधुकरी करने जा रहे थे ऊंचा गांव में, तो अच्छा जैसे हम लोग अच्छा घड़ी पहने हैं, अच्छा कपड़ा पहने हैं, तो एक भक्त कहे कि ये ड्रेस उतार कर जाइए नहीं तो मधुकरी लोग नहीं देंगे, अगर आप अच्छा घड़ी पहन कर जाएंगे, अच्छा कपड़ा पहन कर जाएंगे तो इतना अच्छा पहने और भिक्षुक वृत्ति अपनाए हो तो ऐसा भेष बनाइए। तो सब लोग एक ऐसे गमछा जैसा पहने, एक ऐसे ऊपर से ले लिए और मांगने के लिए गए। तो मांगने के लिए मांगना जो है हमेशा निंदनीय होता है, प्रशंसनीय। कौन प्रशंसा का पात्र होता है? देने वाला। जो देता है वो हमेशा प्रशंसनीय होता है और जो लेता है वो हमेशा निंदनीय होता है। लेने वाले को देना पड़ता है उसका शुद्ध ब्याज के साथ। जैसे ब्रज में लोग मधुकरी मांगकर खाते हैं तो भक्त लोग कहते हैं मधुकरी उसको मांगना चाहिए जो बिल्कुल निष्किंचन हो, फटक चंद गिरधारी, जिनके पास लोटा न थाली, जिसके पास लोटा थाली भी न हो, कुछ न हो बनाने के लिए, कोई बर्तन भी न हो, तो वो मधुकरी कर सकता है। लेकिन आज फैशन हो गया है ब्रज में, जो भी जाता है पर्स में खूब पैसा है लेकिन जाएंगे मांगने के लिए, तो नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगे भी तो पैसा दे देना चाहिए। तो एक भक्त कहे कि देखो मधुकरी मांग कर खा रहे तो इसका बहुत बड़ा ब्याज होता है। तो बता रहे थे कि ब्रजवासी के टुकड़े, नौ नौ हाथ के दांत, अब भजन किए तो उबरे नहीं तो फाड़े आंत। बता रहे थे अगर भजन करेंगे मधुकरी खा करके तो आप उबर जाएंगे, नहीं तो आपका आंत फाड़ करके हो। ब्रजवासी के टुकड़े, नौ नौ हाथ के दांत, माने ब्रजवासी का जो टुकड़ा है रोटी का वो बहुत परिश्रम से वो लोग करते हैं। ब्रज में कितना परिश्रम करके वो लोग उत्पादन करते हैं, गेहूं ज्वार बाजरी जो भी है बहुत परिश्रम करते हैं वो लोग। और वो आप उनका परिश्रम का कमाया हुआ मांग कर खा करके सोएंगे तो आपका वो लीवर फाड़ करके ले जाएगा वो। अगर भजन किए तो वो बरे, भजन करेंगे तो ठीक है। हम देखे बरसाना प्रेम सरोवर में विनोद बिहारी बाबा को, वो मधुकरी लाकर खाते थे लेकिन दिन भर भजन करते थे जहां सहदेव दास रहते हैं। तो मधुकरी एक बार जाकर ले आते थे और उसी को सुबह शाम पा लेते थे, और उनका दिनचर्या था केवल भजन करना, मौन लेकर भजन करते थे। तो ये मधुकरी करना मतलब साधारण नहीं है, भजन करने वाले के लिए मधुकरी है। तो भगवान को भी नारायण को भी आचक बनने के लिए छोटा बामन का रूप धारण, बावन अंगुल, बावन अंगुल का जो शरीर होता है उसको बामन कहते हैं, बामन बन करके गए। जब बलि महाराज के यज्ञ मंडप में पधारे तो उनका तेज देख करके बलि महाराज बहुत प्रसन्न हो गए कि बहुत तेजस्वी ब्राह्मण आया है, हमारा यज्ञ जो है संपन्न हो गया। किसी यज्ञ में अगर योग्य ब्राह्मण आते हैं तो उनको दान देने से यज्ञ सफल हो जाता है। पात्र को जैसे वृथा वृष्टि समुद्र सुवृथा तृप्तस्य भोजनम, तृप्त आदमी को भोजन कराएंगे तो व्यर्थ है, और समर्थ आदमी को दान देना भी व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थस्य, जैसे आप बिरला को बोलेंगे मैं 100 रुपया आपको दान देता हूं। या अंबानी परिवार में जाएंगे मैं 1000 रुपये आपके लिए दाने दे रहा हूं, तो वो फलित है नहीं। ऐसे आदमी को दान दीजिए जो जो जरूरतमंद है, जो पात्र है। पात्र में कुछ देने पर वो फलदायी होता है। वृथा दानम समर्थस्य, समर्थ व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। प्रभुपाद जी कहते हैं पात्र मतलब जैसे भक्त है या भगवान के लिए या गो सेवा के लिए वो उत्तम दान होता है। गो सेवा के लिए, भगवान सेवा के लिए, वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव सेवा के लिए जो दान होता है वो सात्विक दान होता है। दान 3 प्रकार के गीता में भगवान कहते हैं, राजसी, तामसी, सात्विक। तो समर्थ व्यक्ति को दान देना, लोग वो व्यक्ति को जिसको आप दान देंगे अपमान महसूस करेगा। तो बलि महाराज के जग में बामन देव आए तो बामन देव का बहुत स्वागत किए। बामन देव हाथ में कमंडल लिए थे, छाता लिए थे और मेखला पहने थे मुंज का। जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी बामन के रूप में देखा तो वे निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। अतः प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किया। जन्म संस्कार संपन्न किया तो बामन देव को यज्ञोपवीत संस्कार के लिए सूर्य देव ने गायत्री मंत्र का जप किया और बृहस्पति ने उनको जनेऊ प्रदान किया। कश्यप मुनि ने मुझ का मेखला प्रदान किया और माता अदिति ने उनको कौपिन प्रदान किया और पृथ्वी ने उनके लिए मृग चर्म प्रदान किया और वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने उन्हें दंड प्रस्तुत किया, दंडा दिया। इस तरह से मृगशाला पहन करके दंड कमंडल लेकर के जैसे ब्रह्मचारी जैसा गए वहां से। पहले गए ब्रह्मचारी मृग चर्म भी पहनते थे या जलपात्र कमंडल लेते थे। अब तो सिस्टम बदल गया, लोग बिस्लेरी लेते हैं। पहले लेकर चलते थे, मतलब कमंडल लेकर चलते थे। अब तो बल्कि जल पात्र बिना पात्र के ही चलते। पहले पात्रता थी, पात्रता धनमा पुनोती, माने पात्रता थी। अब पात्रता कम हो रही है धीरे धीरे, या कर पात्र है। जो बहुत विरक्त है तो कर पात्र, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कर पात्री थे। वो हाथ में ही लेकर खा लेते थे, लेकिन बामन देव यहां पात्र लेकर जा रहे हैं और छाता भी लिए थे। ब्रह्मा जी ने अव्यय भगवान को कमंडल प्रदान किया था, ब्रह्मा जी कमंडल दिए थे। अब सप्तर्षियों ने कुशा और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की थी। सरस्वती माँ ने उनको रुद्राक्ष की माला भेंट की थी। जब इस प्रकार बामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका तो तब वो गए यज्ञ में। तो यज्ञ मंडप में गए तो स्वागत करके बामन देव बलि महाराज उनको बोले कि आप क्या चाहिए, आपको हमारे यज्ञ में आए हैं तो आप कुछ मांगिए, जो मांगना है मांगिए, मैं आपको मोहमांगा वर दे सकता हूं। वो कहे कि मैं स्वर्ग का, पृथ्वी का और नीचे के लोगों का राजा हूं, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधर लोक, तीनों लोगों का मालिक हूं। जबकि बामन देव खुद मालिक थे, भगवान त्रिलोकी थे, लेकिन बलि महाराज बोले कि मैं त्रिलोकी हूं इस समय, आप जो जितना मांगना है मांगिए। तो बामन देव कहे कि नहीं, 3 पग भूमि दे दीजिए। तो बामन देव की इस बात को सुनकर बलि महाराज बोले कि 3 पग में क्या होगा, आप ज्यादा मांगिए, मांगना है तो कोई द्वीप मांग लीजिए, कोई देश मांग लीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जैसे बड़े बड़े पृथु महाराज गए नहुष, जजाति पुरुर्वा बड़े बड़े सम्राट जो है ससागरा पृथ्वी के राजा थे, लेकिन उनको संतोष नहीं था। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अति संग्रह न कर्तव्य। जो संतोषी ब्राह्मण होता है ज्यादा संग्रह नहीं करता है। तो बोले तीन पग ही मुझे दे दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए। बोले कि अरे आप ब्राह्मण के बच्चे हो, मांगने नहीं आता है, मांगना है तो ज्यादा मांग लो कि कभी किसी से मांगना न पड़े और हमारी भी बदनामी होगी। तीन पग दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि एक बच्चे को उसने तीन पग जमीन देकर फुसला दिया, बहला दिया। ऐसा मांगो कि कभी न मांगना पड़े तुमको। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं मांगता हूं, तीन पग ही चाहिए। से भागवतम में कहा गया कि संतोष से मन शुद्ध होता है, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, भजन करने से आत्मा की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है। जिसको संतोष हो जाता है, संतोषम परम सुखम। संतोषी को कितना भी ईश्वर दे दीजिए उसको आकांक्षा नहीं होता है। संतोष हो गया तो समझिए कि मन उसका शुद्ध है। संतोष होने से मन की शुद्धि हो जाती है, स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, या वस्त्र को धो देने से वस्त्र शुद्ध हो जाता है, और दान करने से धन शुद्ध हो जाता है। अब भगवत कृष्ण भावना से प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्थात भजन करने से आत्मा की शुद्धि होती है। तो वामन देव के रूप में भगवान करें कि मैं संतोष प्राप्त कर चुका हूं, मुझे ज्यादा संग्रह नहीं करना, तीन पग दीजिए। लेकिन वामन देव के सामने बलि महाराज कह रहे हैं कि अरे भाई हमारी प्रतिष्ठा पर भी विचार करो, तुम तीन पग में क्या कर पाओगे, एक आश्रम भी नहीं बना पाओगे। कम से कम ब्रह्मचारी होते एक आश्रम बनाने भर जगह ले लो। ठीक है, मैं असुरों से मपवा देता हूं तीन पग भूमि। बड़े बड़े असुरों का एक एक पैर में, पूरा भारत को एक पैर में नाप लेंगे, बड़े बड़े असुर हैं, असुरों के पैरों से। तो बोले नहीं, मैं इसी पैरों से अपने चरणों से ही नापूंगा। आप संकल्प कीजिए कि मैं अपने पैर से भगवान अपने पैर से बोले नापना चाहता हूं। भगवान क्यों इतना छल से बात कर रहे थे? भगवान जब बलि महाराज देने के लिए तैयार ही थे, लेकिन फिर भी भगवान बहुत ट्रिक कर रहे थे। बलि छलने को आए त्रिलोक की, बलि को छल से क्यों उनका ले लिए? वैसे भी दे सकते थे। अगर भगवान कहते कि मैं भगवान हूं और मुझे अपना सारा साम्राज्य दे दो तो भी दे सकते थे, बलि महाराज दे सकते थे। लेकिन भगवान जैसा ट्रिक किए, जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि मैं दूतम छलयताम अस्मि, छलकारियों में मैं दूत क्रीड़ा हूं। भगवान सबसे छलकारी हैं, उनको कोई छल नहीं सकता है। लेकिन दूसरे को छलेंगे, असुरों को छलेंगे, ठीक है, जैसे मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छले, लेकिन भक्त के सामने ऐसा क्यों किए? बलि महाराज तो भक्त थे, देने के लिए भी तैयार थे। ऐसा एक ही बार दाता है जो इंसिस्ट कर रहा है कि ज्यादा ले लो। प्रायः लेने वाले को ज्यादा मांगना पड़ता है, लेकिन इस क्रम में देने वाला ज्यादा देना चाहता, लेने वाला कम मांग रहा है। प्रायः लेने वाले का डिमांड ज्यादा होता है और देने वाले कम देते हैं। प्राय मांगिए कहीं कि जन्माष्टमी के 1,00,000 डोनेशन दे दिए, तो बोले नहीं, 20,000 11,000 ले लीजिए, बाद में देखेंगे। हमेशा देने वाला मांगने वाले के आधा ही नहीं तो उसे कम देता है। लेकिन यहां बलि महाराज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वामन रूप में भगवान कहते नहीं, हमको उतना नहीं चाहिए, इतना ही दीजिए। जैसे राजा रघु के समय में कौश नाम का एक ब्रह्मचारी था, वर्तन्तु मुनि के आश्रम में रहता था। स्कंद पुराण की कथा एक बार महाराज यहां भी बता रहे थे। तो कौश गुरु वर्तन्तु मुनि के आश्रम में रखकर 14 भाषाओं का अध्ययन किया था, और ज्ञान संपन्न करने के बाद वर्तन्तु मुनि से कहा कि गुरुदेव, आपने 14 भाषाओं का ज्ञान कराया है, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, मुझसे कुछ दक्षिणा स्वीकार कीजिए। वर्तन्तु मुनि कहे कि बस तुम्हारी सेवा ही गुरु दक्षिणा है, तुमने आश्रम में रह करके आश्रम की सेवा किया है, गोरक्षा किया है, कृषि में सहायता किया है, तुम्हारी सेवा ही गुरुदक्षिणा है, क्या दे सकते हो? तुम्हारे पास है क्या? कौपीन है, कमंडलू है, इसके अलावा और क्या है? तो कौश कहता, नहीं मैं अवश्य कुछ आपको देना चाहता हूं गुरुदक्षिणा, बार बार कह रहा था। बार बार कहने से वर्तंतु मुनि को थोड़ा आवेश आ गया, जैसे कहा गया कि चंदन को भी खूब रगड़िए तो चंदन से भी अग्नि आ जाती है, जबकि चंदन शीतल होता है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं आपको मैं देना ही चाहता हूं, कुछ देना चाहता हूं। पहले के शिष्य और गुरु बहुते थे, शिष्य देना चाहता है, गुरु लेना नहीं चाहता है। आज गुरु चाहते हैं, शिष्य देना नहीं चाहते। आज गुरु चाहता है कि कुछ पैसा वाला है दे देगा तो मंदिर बना सकते हैं, लेकिन वो शिष्य देना ही नहीं चाहता है। उसे शिष्य देना चाहता है, गुरु लेना नहीं चाहता है। जो गुरु शिष्य धन, तुलसीदास जी एक पद लिखते हैं, जो गुरु शिष्य धन सो कन हरही, सो गुरु घोर नरक मह पर। जो गुरु शिष्य का धन तो ले लेता है, लेकिन इसका शोक मोह अज्ञान नहीं दूर करता है तो गुरु नरक में जाता है। लेकिन वो उत्तम प्रकार के गुरु वर्तंतु मुनि निस्वार्थ सेवा करते थे, ट्यूशन फीस नहीं लेते थे, इतने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे, फ्री शिक्षा था। वैदिक काल में एजुकेशन जो है फ्री था सबके लिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, ये कहीं दरी पर बैठकर पढ़ते थे। जैसे संदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण सुदामा, एक गरीब और एक धनी, लेकिन पढ़ाई के लिए दोनों एक जगह बैठते थे। आज की पढ़ाई इतनी विषमता हो गई, प्रभुपाद जी आज के एजुकेशन पर कमेंट करते हैं कि आज का एजुकेशन जो है इतना महंगा हो गया कि सब लोग पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन वैदिक काल में देखिए, सुदामा और कृष्ण एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, महर्षि धौम के आश्रम में अरुणी भी पढ़ रहा था और पांच पांडव भी पढ़ रहे थे। महर्षि धौम के यहां पढ़े थे ना पांडव भी, वे कुल गुरु थे। तो पहले की शिक्षा जो है बहुत सरल थी, गरीब आदमी भी पढ़ा लेता था अपने बच्चों को। तो वर्तंतु मुनि कहे नहीं कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब बार बार आग्रह से कहे कि ठीक है देना चाहते हो, अब दक्षिणा देना चाहते हो तो 14 भाषाओं के बदले में 14 करोड़ सोने का मुद्रा दो, इतना बड़ा डिमांड कर दिए। कितना डिमांड किए? 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दो, देना चाहते हो तो कौश कहता है कि ठीक है मैं अवश्य आपको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा। अब गुरु को प्रणाम करके जाता है रघु के पास। राजा रघु उस समय के सबसे बड़े दानी थे, उनके राज्य में गाय ब्राह्मण अतिथि की खूब सेवा होती थी और जो भी कर वसूल होता था सब प्रजा के लिए लगा देते थे। जब रघु के राजमहल में कौश जाता है तो देखता है कि राजा रघु के पास कुछ नहीं है, मिट्टी के सकोरे हैं, मिट्टी के पात्र हैं, कुश के चटाई हैं, सारा धन अपना विश्वजीत यज्ञ में दान कर दिए थे, सब खजाना खाली हो गया था। तो कौश देखा कि इस समय तो राजा के पास कुछ नहीं तो क्या मांगूंगा। लेकिन राजा कहे कि बस आपके आने का क्या प्रयोजन है, वर्तंतु मुनि के आश्रम में तपश्चर्या में कोई विघ्न तो नहीं है ना, गायों के लिए चरागाह में घास की कमी हो गई है या जलाशयों में पानी की कमी हो गई है, क्या क्या सेवा कर सकता हूं? आप आए हैं तो आश्रम के लिए क्या मैं धन दे सकता हूं? कौश कहता कि मैं आपसे क्या इस समय मांगूं, आपके पास खुद ही कुछ नहीं है, देखता हूं आपके पास मिट्टी के बर्तन हैं और आपके बैठने के लिए चटाई है। तो राजा रघु कहते नहीं आप निसंकोच कहिए, शर्माइए मत। तो कहे कि मैं वर्तंतु मुनि के लिए 14 करोड़ स्वर्ण की सिक्का लेने के लिए आया था गुरु दक्षिणा में देने के लिए। तो राजा रघु कहे कि अवश्य आपको मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तुरंत जो है कुबेर पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी किए राजा रघु। राजा रघु की सेवा भावना देखकर कुबेर उनके खजाना को भर दिए। देखे कि इतना सेवा भाव है राजा को, तो प्रसन्न होकर उनका खजाना ऐसे ही भर दिए। वर्तंतु मुनि के शिष्य कौश को राजा रघु कहे कि जितना लेना है ले लो, 14 करोड़ क्या, आपको जितना लेना है आप ले सकते हो। कोष का तक नहीं, केवल 14 करोड़। कहने का अभिप्राय राजा रघु, कहने का अभिप्राय यह था कि 14 करोड़ के लिए आप आए थे, अब जितना लेना है ले सकते हैं, कोई कमी नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन कौस केवल 14 करोड़ लिया। जैसे वामन भगवान शिक्षा दे रहे हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं एक श्लोक में कि ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए वामन देव शिक्षा दे रहे हैं कि ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। जरूरत भर अगर आप दान लेते हैं तो बाधा नहीं होता है। कोई दान स्वीकार करता है जरूरत भर, जितनी आवश्यकता है, तो वो बंधन नहीं होता है। आपको जरूरत है कुछ पैसे की, तो आवश्यकता के अनुसार अगर दान आप स्वीकार करते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो ठीक है। आवश्यकता से अधिक अगर कोई लेता है, देखिए वामन देव 3 पग ही लिए, बोले नहीं ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पग ही। भले बाद में 3 पग में पूरा नाप लिए। तो कौश जो है केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लिया। ऐसा नहीं कि 2-4-5 अपने लिए भी पॉकेट में रख लेते हैं, बोले नहीं, या 100-200 रख लेते हैं इमरजेंसी के लिए, नहीं लिए, उतना ही लिए और गुरुदेव को दे दिया। तो वामन देव बलि महाराज से बड़े ट्रिक से कह रहे थे कि 3 पग केवल हम अपने पैर से मापेंगे, और जब मापने का समय हुआ तो त्रिविक्रम रूप धारण कर लिए, पूरा एक पांव में पूरा आकाश माप लिए, पृथ्वी आकाश दोनों माप लिए, एक पांव में स्वर्ग माप लिए, दो ही क्रम में सब माप लिए। भगवान के लिए तो 2 क्रम भी बहुत है, भगवान तो एक आधा क्रम में भी माप सकते हैं। भगवान के एक एक रोम कूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, भगवान के श्वास वायु से अनंत ब्रह्मांड सृजन लेता है। तो 1-2 पद क्या, भगवान के लिए कोई पद विन्यास मायने नहीं रखता है, वो 1 पद में अनंत ब्रह्मांड को भी माप सकते हैं। भगवान जब विराट रूप दिखाए तो उनके मुख में अनंत सूर्य थे, चंद्रमा थे, समुद्र था, पहाड़ था, पर्वत था, पूरा ब्रह्मांड ही उनके मुख में आ सकता है, तो उनके पांव में तो सब कुछ आ सकता है। तो ऐसे त्रिविक्रम रूप धारण किए भगवान, पूरे ब्रह्मांड को भी के जो बॉर्डर लाइन को भी तोड़ दिए। और गंगा जी प्रकट हुए उनके चरणों से, जब बिरजा नदी में उनका पांव टकराया ना, तो आए कारण सागर को, उसको बिरजा भी बोलते हैं ना, उसको बिरजा भी बोलते हैं कारण सागर को। तो भगवान का जो चंद्र नख है, भगवान का नख भी चंद्रमा जैसा द्युतिकार है, उनके चंद्र नख प्रभा से ही वो ये हो गया, प्रकाश से ही, जोड़ नहीं लगाना पड़ा, चंद्र नख प्रभा से ब्रह्मांड का लेयर फट गया। तो वो जल धोते हुए ध्रुव लोक में आया, ध्रुव महाराज धारण किए, फिर ब्रह्म लोक में आया, ब्रह्मा जी धारण किए, फिर शिव जी अपने मस्तक पर धारण किए, क्योंकि भगवान का चरण से, तो वही गंगा जी चरण से आती हैं। जिस गंगा को शिव जी धारण करते हैं वामन देव से के चरण से, उन्हीं चरणों को वामन देव बलि महाराज पहले धो चुके थे। जब उनके यज्ञ मंडप में आए तो बलि महाराज उनके चरण को खूब धोए, अच्छा से धो करके जलपान किए, पूरे अपने परिवार में उसको छिड़के, तो ये समझ गए कि हमारे पूरी बिरादरी जो है आसुरी बिरादरी अब तर जाएगी, क्योंकि वामन देव का चरण धो करके ये किए तो उनके जितने आसुरी बिरादरी के लोग सब उद्धार हो गया, सबका उद्धार हो गया। तो वही वामन देव जब त्रिविक्रम रूप धारण किए तो गंगा जी उनके चरण से उत्पन्न होती हैं, शिव जी गंगाधर हैं, गंगा को धारण करते हैं मस्तक में, अपने मस्तक में गंगा को कैसे धारण कर लिए शिव जी, तप के बल से, तपस्या के बल से, जैसे कुंभज ऋषि समुद्र को पी गए, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कुंभज ऋषि का घड़े से जन्म हुआ था, इसलिए उनको कुंभज कहते हैं। कुंभज माने अगस्त मुनि, लेकिन अपने तपस्या के बल से समुद्र को ही पी गए एक बार। या जन्मा ऋषि, गंगा को ही पी गए। हाँ, जानू ऋषि, जब नवद्वीप मायापुर में जब हम लोग परिक्रमा करते हैं तो जानू द्वीप है ना, तो वहां जानुआ ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इधर गंगा को लेकर भगीरथी जा रहे थे। आगे आगे भगीरथी जाते थे और गंगा उनका अनुसरण अनुशीलन कर रही थी। जहां कपिल मुनि का आश्रम था, जहां उनके सगर के 60,000 पुत्र जल गए थे कपिल मुनि के दृष्टि से, तो अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को भगीरथ ले जा रहे थे, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी है। तो उस द्वीप से जहां जन्मा ऋषि तपस्या करते जानू ऋषि, तो उनका गंगा उनका सब आश्रम बहाकर ले गई। वो ध्यान में थे तो गुस्सा आया, गंगा को ही पी गए। बोले इतना तुमको अहंकार हो गया है। ऋषि मुनि लोग गंगा समुद्र को भी पी जाते थे, पी गए। बाद में तपस्या किए भगीरथ, तब छोड़े वो अपने जानू से। इसलिए गंगा के एक नाम है जाहनवा, गंगा का एक जाहनवा नाम भी है ना, जानू ऋषि। जानू मतलब ये होता है जांग से, जांग से फिर गंगा को छोड़ दिए। तो कह कुंभज, कुंभज ऋषि अगस्त मुनि समुद्र को ही पी गए थे। हनुमान जी अपने सिद्धि से सूर्य को ही निगल गए थे। हनुमान जी को एक बार भूख लगी तो बचपन में माँ से अंजनी से कहे कि माँ बहुत भूख लगी है, तो माँ कही कि जाओ जंगल में जो लाल फल होगा, जब फल पक जाता है तो लाल हो जाता है, तो लाल फल जो पक गया हो खा लेना। तो प्राची दिशि में सूर्य को देखे, सूर्य जब उदय होता है तो लाल होता है। आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण लधवी पुरा विधि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। सूर्य जो है प्रारंभ में भी लाल होता है और जब अस्त होता है तो भी लाल होता है, मतलब हर्ष और विषाद दोनों में समान होता है। सूर्य जब उदित होता है तो भी कम प्रकाश होता है, लालिमा होता है, अस्त होते समय भी वैसा ही होता है। जब अस्त होता है मतलब समझी उपमा है कि आपत्ति में भी वैसा दोनों में समान होता है। तो लाल लाल हनुमान जी देखे तो सूर्य को निगल गए, खा गए, हाहाकार मच गया, अंधकार हो गया। तो देवन यानी करी बिनती तब छाड़ दिए रवि कष्ट निवारो। देवताओं ने प्रार्थना किया कि हनुमान जी छोड़ दीजिए, तो रवि सूर्य के कष्ट का निवारण कर दिए, छोड़ दिए, काल दिए। हनुमान जी बहुत बलवान है, मॉरिशस में हर घर में हनुमान जी हैं। मैंने कहा कि आप लोगों को हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, गदा हर घर के सामने जो हिंदू हैं हनुमान जी का छोटा मंदिर है। बाकी लंका में हनुमान जी गए थे तो हनुमान जी का लोग स्वागत नहीं किए तो तहस नहस कर दिए। ये मॉरिशस में हनुमान जी को सब लोगों ने स्वीकार किया, इसलिए मॉरिशस जो बहुत शांति प्रिय है, वहां भक्ति भी है, हर घर के सामने हनुमान जी हैं। गरीब आदमी तो भी इतना बड़ा ये बनाकर रखा है अल्टर, धनी है तो बड़ा बनाकर रखा है, इसलिए वहां पर भक्ति अच्छा है, बहुत भक्ति है और शांति भी है। और रावण हनुमान जी को नहीं अपनाया तो तहस नहस कर दिए हनुमान जी। हनुमान जी से पंगा लिया रावण तो उसका सब विनाश कर दिए, इसलिए भक्त से पंगा नहीं लेना चाहिए। कोई छोटा भी भक्त हो तो उसे पंगा लेने से जो है काम बिगड़ जाता है। तो हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, जब लंका में हनुमान जी जा रहे थे भगवान श्री राम एक मुद्रिका दिए थे, तो राम नाम लिखा था, तो समुद्र तैरना था तो मुद्रिका को मुंह में डालिए, मेली कैसे मेली मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। अब अंगूठी था तो पहनेंगे क्यों, भगवान का है पहनेंगे तो ये हो जाएगा ना, कोई चीज गुरु का है या भगवान का है तो पहन नहीं लेना चाहिए। तो देखे कि तैरना है समुद्र में तो मुंह में रख लिए राम नाम, ऐसे उनके मुंह में भी राम नाम रहता है और मुद्रिका पर भी राम नाम अंकित था, तो बोले राम
का नाम मुंह में होना चाहिए, जिह्वा में होना चाहिए, तो मुंह में रख लिए। इसलिए भगवान का नाम मुख में रखे तो लंका में जाकर के भी वो वापस आ गए। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान का नाम हमेशा जिह्वा में रखेगा, हमेशा जप करेगा, तो सुरक्षित लंका से भी आ सकता है, राक्षसों के बीच से भी आ सकता है। नहीं तो जाकर वो जो जहां गया वहीं का हो जाता है। बहुत भक्त लोग जाते हैं ना, जहां जाते हैं वहीं रह जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रभुपाद जी पूरे विश्व में प्रचार करके सुरक्षित आ गए, कोई बिजनेस व्यवसाय नहीं किए, क्योंकि हमेशा भगवान का नाम वो धारण किए। हनुमान जी जैसा, हनुमान जी हमेशा नाम को जिह्वा पर रखे तो लंका में जहां राक्षस लोग से गाय बैल आदमी सब कुछ खाते थे, वहां खाने का कुछ नहीं था, फिर भी हनुमान जी लहसुन प्याज नहीं खाए, कुछ भी खाने की सुविधा नहीं थी। अगर जप कोई सावधानी से जप करेगा तो बच सकता है। तो बहुत भक्त लोग विदेश में जाते हैं तो फिर वो सब कुछ खाने लगते हैं, धीरे धीरे सब छूट जाता है। और जो लोग सीरियसली जप करते हैं, जप का आश्रय लेते हैं तो संभल जाते हैं, बच जाते हैं। हमारा काम है भगवान, एक भक्त लोग भजन गाते हैं कि हमारा काम है भगवान का नाम लेने का, अब भगवान का काम है गिरते को थाम लेने का। हम हमेशा गिरते ही रहते हैं तो भगवान हमेशा थामते रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है जब चलता है तो दो कदम चलता है गिर जाता है तो माँ उसको पकड़ लेती है, जब गिरने को होता है पकड़ लेती है, नहीं तो हाथ पकड़ती है। तो भगवान का नाम अगर रहेगा साथ में तो गिरते गिरते भी भगवान पकड़ लेते हैं। हमारा काम है भगवान का नाम लेने का, अब भगवान का काम है गिरते को थाम लेने का। हम गिरेंगे बार बार तो भी भगवान हमको सहारा देंगे। तो बलि महाराज जो है भगवान को दान में सब कुछ दे दिए अंत में। उनके गुरु जी मना कर रहे थे कि बलि गुरु त्यजो, बलि ने गुरु को त्याग दिया कि नहीं भगवान आए हैं तो इनको दे देना ही बुद्धिमानी है, दे दिए सब कुछ। अंत में भी भगवान उनको बख्शे नहीं, बक्सा बिलार मुर्गा बाण होके रही हूं। एक मुर्गा था तो उसको बिली उसके ऊपर झपटी तो पूंछ जो है बिली के मुख में आ गया, तो मुर्गा कैसे भी पूंछ विहीन होकर बच गया, बाण हो गया, पूंछ तो टूट गया बिली के मुख में चला गया लेकिन बच गया। तो मुर्गा कहा कि भले बकस दिया, भले बाण हो गया लेकिन जीवन तो बच गया। तो बक्सा बिलार मुर्गा बाण होकर, मन मुर्गा बेचारा बाण हो गया, पूंछ चला गया बिली के मुख में लेकिन जान तो बच गया। तो बलि महाराज सब कुछ दे दिए तो भी भगवान बख्शे नहीं, उनको बंदी बना दिए, बंदी बना दिए ना अंत में। बासुकी को बोले बांध दो इसको, मुसक बांध बांध दिए। बड़ा दिनहीन हो गए, सब लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये सब पनिशमेंट के लिए इसने सब दे दिया। बोले तो झूठ क्यों बोला, तीसरा पग कहां है, तीसरा पग के लिए तुम्हारे पास जगह कहां है। तो बलि महाराज कहे कि मेरे सिर पर रख दीजिए। आप गीता में कहें कि ये भी शरीर भी एक दे क्षेत्र है, क्षेत्रमिति विधीयते, क्षेत्र और इसमें क्षेत्रज्ञ हैं, दो क्षेत्रज्ञ हैं आत्मा और परमात्मा। शरीर को भी क्षेत्र कहा गया, माने खेत कहा गया है, जमीन कहा गया है। तो बलि महाराज बहुत चतुर थे, कहे कि अभी तो हमारा ये शरीर है, ये शरीर का कीमत धन से 10 गुना कीमत धनी का होता है। हमारे पास जितना संपत्ति है उससे 10 गुना कीमत हमारा है। अभी हमारे पास तो सबसे असली धन तो है, हमारे शरीर को ले लीजिए। धन का कीमत नहीं होता है, धनी का कीमत होता है। तो बलि महाराज विद्वान थे ना, वो भी कहे कि अभी तो असली संपत्ति हमारे पास है, हमारे सिर पर पैर रख दीजिए। कृतार्थ कर दिए बलि महाराज को, पैर रख दिए। तो बलि महाराज आत्मनिवेदन सब कुछ दे दिए। बलि महाराज जैसा कोई दानी नहीं हुआ है, जो भी था उनके पास सब कुछ अपना रोम रोम दे दिए सब। मानस देहा गया जे किछु मोर अर्पिनु तुया पदे नंद, सब कुछ दे दिए। ऐसा सफल दानी जो है वैदिक इतिहास में ये कहीं बलि महाराज हुए हैं। बलि महाराज कंजूसी नहीं किए, सब दे दिए, अपने आप को भी दे दिए। भगवान को देना, जो भगवान को देता है वो वही वास्तव में सब कुछ प्राप्त करता है। भगवान को देने वाला कभी कंगाल नहीं होता है। जो भगवान को दे दिया मतलब भगवान से कई गुना उससे ज्यादा प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य को आप जल देते हैं, एक लोटा जल देते हैं तो जल की कमी होती है, बल्कि बरसात में सूर्य कितना जल दे देते हैं। सूर्य खारे पानी को पी करके क्षारम जलम बारी मुचह पिबंती तदेव कृत्वा मधुरम बमंती। सूर्य जो है खारे जल को पी करके और मधुर जल के रूप में वर्षा कर देते हैं, बल्कि उसको और अच्छा बनाकर दे देते हैं। भगवान को अगर कोई देता है तो उसको अधिक मात्रा में और सुंदर बनाकर दे देते हैं। जैसे आप बढ़ई को लकड़ी देते हैं तो सुंदर बनाकर मेज चेयर बनाकर दे देता है। तो भगवान को देना मतलब जैसे सूर्य को कोई जल से पूजा करता है तो सूर्य उसको समृद्धि देते हैं। सूर्य देव कितना जल देते हैं, सूर्य बारी मुचह, बादल कैसे बनता है सूर्य के द्वारा, और वो भी सुंदर बनाकर दे देते हैं। तो बलि महाराज ने जो भी दिया वामन देव उसको और सुंदर बनाकर के दे दिया, और दिए ही नहीं बल्कि अपने आप को दे दिए। तुलसी दलमा त्रिणनम जलम चुलके नवा, भगवान को कोई तुलसी दल और चुलू भर जल भी देता है तो उसके बदले में भगवान सोचते हैं क्या मैं दूं, तो अपने आप को ही दे देते हैं। और अब बलि महाराज के गेट कीपर होकर के हमेशा उनके दासता में लग गए। बलि महाराज ने इतना सब कुछ दे दिया तो भगवान भी अपने आप को उनको दे दिए, समर्पित कर दिए। और आज भी बलि महाराज के लोक में, सूतल लोक में, उनके दरवाजे पर गेट कीपर के रूप में खड़े रहते हैं भगवान उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। बलि महाराज ऐसा अगर विश्वास तो सब कुछ दे करके अंत में उसे अधिक प्राप्त कर लिए और भगवान उनके हर गेट में है ना, उनके हर गेट में गेट कीपर के रूप में भगवान है। ब्रजवासियों ने भगवान को गोवर्धन पूजा में जितना भी पकवान बना सब खा गए। एक रूप से पूजत है दूजे रूप पूजाए, सहस्र भुजा पसारी के मांग मांग के खाए। भगवान गिरिराज जी में प्रकट होकर मांग मांग कर सब खा गए। एक बार खा गए फिर बना कर लाए, दो बार खा गए ना। एक बार तो जितना पकवान इंद्र के लिए बना था वो सब खा गए, मांग मांग के खाए हजारों भुजा से। एक रूप से पूजा कर रहे थे और दूसरे रूप से पूजा ले रहे थे, और सहस्र भुजा पसारी के मांग मांग के खाए। आनी ओर गिरिराज जी में गांव है, आनी ओर मतलब और ले आओ, ये होता है ना आनी। हाँ, मांग मांग कर खा रहे थे भक्त से। ऐसा मांग कर कोई खाता है? इतना खाने के बाद भी और मांग कर खा रहे थे, तो बता कितना बड़ा इसका पेट है कि इतना खा गया फिर भी पेट नहीं भर रहा है। भगवान का पेट है, अनेक बाहू उधर वक्त्र नेत्रम, गीता में भगवान कहे हैं कि मेरे अनेक पेट हैं, अनेक बाहू उधर वक्त्र नेत्रम। भगवान को कोई खिला सकता है? किसी के हिम्मत है भगवान को खिलाने का? कोई नहीं खिला सकता है। भगवान कृपा करके स्वीकार कर लेते हैं, आप क्या भगवान को खिलाएंगे? भगवान का पेट इतना बड़ा है कि अनंत ब्रह्मांड उसमें है फिर भी नहीं भरता है, खाली रहता है। भगवान भक्ति से आपका कुछ लेकर संतुष्ट हो जाते हैं। अंत में नहीं खिला पाए ब्रजवासी लोग तो तुलसी देने से भगवान बोले बस करो, अब इन लोगों के पास नहीं है, संतुष्ट हो गए। तो भगवान को हम लोग क्या खिला, भगवान सबको खिलाते हैं। भगवान हम लोग को खिलाते हैं, हम क्या भगवान को खिलाएंगे? हम एक सहानुभूति करते हैं, सिंपैथी भगवान के प्रति, तो हमारी सहानुभूति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो समय हो गया, यही हम विराम देते हैं। बहुत तो 7 दिन कथा होता है वामन देव के ऊपर। शील प्रभुपाद की, वामन द्वासी की, वामन भगवान की।